तेरे साहस और हिम्मत से सब सपने सच हो जाएंगे। जमी आसमां और फिजा तेरी जीत का जश्न मनाएंगे।
जोहर श्रोताओं, महिला और संपत्ति का अधिकार अभियान के दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से हमें आप लोगों की इस विषय में कई राय और प्रतिक्रिया मिली है, जो काफी सराहनीय है। तो श्रोताओं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्या महिलाओं को एक समान वेतन मिलना चाहिए और क्या कार्यस्थल में महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए। आप अपने प्रतिक्रियाएं दें नंबर 3 दबाकर। धन्यवाद। आइए अब जान लेते हैं इस विषय के बारे में कुछ बातें।
संपत्ति क्या है सरस्वती, ये तो बताओ।
संपत्ति कुछ ऐसा है जिसके ऊपर हमारा स्वामित्व होता है, जो हमारा अधिकार है। संपत्ति 2 प्रकार की हो सकती है, अचल संपत्ति जैसे पेड़, जंगल, भूमि, आवास आदि, निजी संपत्ति जैसे पशु, साइकिल, कपड़े, बर्तन, आभूषण आदि।
क्या तुम यह बता सकती हो कि संपत्ति का अधिकार क्या होता है?
संपत्ति का अधिकार वो होता है जिसमें लोग संपत्ति पर अपना मालिकाना हक पेश करते हैं। संपत्ति के अधिकार के लिए अचल और चल दोनों संपत्ति का उपयोग शामिल है, जैसे संपत्ति से कमाई या आय, दूसरों के लिए संपत्ति के स्थानांतरण और यह निर्णय लेना कि कौन और कैसे संपत्ति का उपयोग कर सकता है।
तो ये बताओ कि कैसे किसी को संपत्ति पे अधिकार दिया जाता है?
देखो, इसके लिए 2 कानून हैं। पहला वैधानिक कानून और दूसरा प्रथागत कानून। वैधानिक कानून भारत की लिखित कानून है, यह सभी भारतीयों पर समान रूप से लागू होता है। संपत्ति के बारे में वैधानिक कानून संविधान, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और संशोधन और शादी और तलाक कानून भी शामिल है। वहीं प्रथागत कानून जिसमें धार्मिक कानून भी शामिल है, यह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न धार्मिक समूहों से संबंधित लोगों द्वारा अपनाया जाता है।
अच्छा, ये बताओ कि विरासत कानून का क्या अर्थ है?
देखो, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर संपत्ति के विभाजन को नियंत्रित करने वाले कानून को हम विरासत का कानून कहते हैं।
अच्छा, ये बताओ सरस्वती, तो फिर हिंदू कानून के हिसाब से संपत्ति के विभिन्न अधिकार क्या हैं?
देखो दीपक, हिंदू व्यक्तिगत कानून 2 वर्गों में संपत्ति को विभाजित करता है। पहला स्वयं अर्जित संपत्ति और दूसरा पैतृक भूमि संपत्ति। स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होता है जो खुद से कमाया या बनाया गया है, और पैतृक भूमि संपत्ति जो कि अपने पिता से अपने बेटे को प्राप्त होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता है।
अच्छा, ये बताओ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में क्या प्रावधान है?
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा अर्जित संपत्ति का हक उसके बच्चे और मृतक की विधवा को बराबर मिलता है। पैतृक संपत्ति मितक्षरा के अनुसार जब कोई उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है तब उसका हिस्सा पुरुष वारिस में बांटा जाता है, लेकिन 2005 उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के तहत अब से बेटियों को भी पैतृक भूमि में हक दिए जाने का प्रावधान है।
अच्छा, तो महिलाओं के लिए उत्तराधिकार कानून के तहत क्या अधिकार है? जैसे एक विधवा का संपत्ति पे क्या अधिकार है और वहीं एक विवाहित बेटी का क्या पैतृक संपत्ति में अधिकार है?
2005 के अधिनियम में संशोधन के बाद अगर कोई विधवा दोबारा शादी करती है तो उसे पहले पति के संपत्ति में भी अधिकार होता है। जहां तक शादीशुदा बेटी का सवाल है तो नियम के अनुसार पैतृक संपत्ति में विवाहित बेटी को हक नहीं मिल सकता है। अगर किसी कारण वह विधवा हो जाती है या उसका पति उसे छोड़ देता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके भाई और रिश्तेदार इसके लिए राजी होते हैं तो उसे हक मिल सकता है। तो श्रोताओं, दीपक को जो जानकारी मैंने अभी अभी दिया उसके बारे में आपका क्या राय है? क्या आपको लगता है कि महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों नहीं? अपना जवाब देना ना भूले नंबर 3 दबाकर। अब आइए सुनते हैं झारखंड मोबाइल वाणी के श्रोताओं का इस बारे में क्या राय है।
रविंद्र कुमार वर्मा, गिरिडीह जिला के अंतर्गत गिरिडीह प्रखंड से बोल रहा हूँ। झारखंड मोबाइल वाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं महिलाओं के बारे में कुछ संदेश देना चाहता हूँ। अक्सर ग्रामीण में देखा जाता है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, 80 बहुत कम है, 95% महिलाएं खेतों में ही काम करती हैं और उसी से अपना गुजर बसर करती हैं। उनको घर तक ही सिमट कर रहना पड़ता है। जो उनके पति या उनके ससुर कहते हैं वही उनको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि उसके पास अपना कोई आय का स्रोत नहीं है। उसको पूर्ण रूपेण अपने ससुर या फिर अपने पति पर आधारित रहना पड़ता है। अगर उसको कभी भी पैसे की जरूरत या और अन्य किसी भी सामान की जरूरत पड़ती है तो उसे अपने पति या फिर ससुर से ही लेना पड़ता है। इसीलिए महिलाएं पूर्ण रूपेण उसी पर आधारित होती हैं और इस कारण जो उसके पति या उसके ससुर कहते हैं वो मानने के लिए वो बाध्य होती है। और इसका मुख्य कारण है शिक्षा। अगर महिलाओं में शिक्षा हो जाए तो अपना रोजी रोजगार खुद कर सकती है, अपना जीवन बसर खुद कर सकती है और वह न अपने पति पर आधारित रहेगी और न ही अपने ससुर पर, वह अपने आप पर खुद आधारित रहेगी, तभी महिलाएं अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। धन्यवाद। मैं रविंद्र कुमार वर्मा, गिरिडीह।
मैं लखेंद्र मंडल, झारखंड मोबाइल वाणी मसलिया से हूँ। मैं एक आदिवासी महिला से बात कर रहा हूँ। बताइए, आपका आदिवासी महिला में लड़की जन्म होने पर क्या समस्या है?
मेरा नाम सुशीला टुडू है, ग्राम सिंगारी थाना टंगरा प्रखंड मसलिया जिला दुमका है। संताल समाज में लड़की जन्म होने पर बाप का जमीन हिस्सा गतिया लोग नहीं देता है। लड़की की शादी होने के बाद बाप जमीन गांव के लोग हड़प लेता है तथा दान कहकर जान मार देता है। संताल समाज में अधिक लोग शराब पीता है। लड़की का शादी एक से अधिक बार होने पर जमीन कटहर नहीं देता है। मेरा नाम सुशीला टुडू।
उन्होंने अपनी जो भी है समस्या के बारे में जानकारी दी है। मैं मसलिया से लखिंदर मंडल।
मैं गोपाल कुमार चंदनकारी प्रखंड बोकारो डिस्ट्रिक्ट झारखंड से बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिनों से मोबाइल बानी की तरफ से माध्यम से चल रही है कुछ प्रोग्राम की महिलाओं को समान अधिकार के बात कह रही है, तो मैं मोबाइल बानी के माध्यम से कहना चाहती हूँ ये बहुत बढ़िया बात है कि उसे भी समान हक मिलना चाहिए, क्योंकि माँ और बाप दोनों को लड़का हो या लड़की दोनों समान रूप से देखती हैं, लेकिन शादी होने के बाद उसे नहीं मिलते हैं। तो सिर्फ जमीन और जायदाद के लिए ही समान अधिकार नहीं, हम कहना चाहती हूँ कि विधानसभा और सांसद में भी समान अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं की बहुत भागीदारी कम है। यहाँ अगर महिलाओं को भी रिजर्व सीट किया जाए, वहाँ पर 81 सीट है हमारे झारखंड में, तो वहाँ पर 44 सीट मिलना चाहिए, संसद में भी आधा मिलना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए। और सरकार जो अभी मनरेगा में जो लागू किया है रोजगार गारंटी कानून, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून, उसमें भी महिला का भागीदारी किया है, लेकिन सरकार को भी जांच करके देखे हैं कि वहाँ पर महिला को मिल रहा है कि नहीं अपने लाभ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे झारखंड के चंदनकारी पूर्वी पंचायत में कह रहा हूँ, करीब 500 से अधिक महिलाओं के लेबर कार्ड बने हैं, लेकिन उसमें से एक भी लेबर महिला लेबर को आज तक काम नहीं दिया गया, इसलिए क्योंकि उसके समान तनख्वाह भी लगे और काम कम कर सकते हैं। तो मैं झारखंड सरकार से कहना चाहती हूँ मोबाइल बानी के तरफ से जो महिला के मुद्दा उठाए, सबसे पहले हम मनरेगा के तहत से शुरू करना चाहती हूँ और उसी से जाँच करके शुरू किया जाए कि हर महिला को काम क्यों नहीं।
मेरा नाम सुनीता है। मैं अपने पति का संपत्ति या बाप का संपत्ति पर हकदार नहीं होने के कारण मैं ये गीत गाती हूँ। ना नाम है हमारा, ना मान है हमारा, हमें कोई हक नहीं है, बस फर्ज ही हमारा। बेटी कभी किसी की, बीवी कभी किसी की, पहचान ना कोई अपना, ना नाम है हमारा। खेतों पे हम हैं जाती, सोना वहाँ उगाती, फसलों पे हक नहीं है, ना जमीन है हमारा। धन्यवाद।
नाम वाकिफ रजा, जिला बोकारो। कौन कहता है कि औरतें पीछे हैं? मेरा माना जाए तो आज औरतें आगे ही हैं। आज औरतें जितना आगे हैं उतना कोई नहीं। हाँ, भले कि उनको पैतृक संपत्ति या फिर पैतृक या पति की संपत्ति उनको नहीं मिल पाता है, वो अलग बात है, वो गांव देहात में हो रहा है। तो हम इसका चाहते हैं कि हमारे झारखंड सरकार इस पे थोड़ा जोर दे और कुछ करे इसके पीछे। देखा जाए तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रह चुकी है, और दिल्ली के सीएम लगातार 3 बार बन चुकी है, वो भी औरत ही है, शीला दीक्षित, और यहाँ तक कि लोकसभा की जो स्पीकर है क्या नाम है उनका, मीरा कुमार कुछ करके है, और जो हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि जिनका आज देहांत हुआ था, आज ही के दिन देहांत हुआ था। तो आप बताइए, महिला तो पीछे नहीं है, इससे जाहिर होता है महिला पीछे हो जा रही है ग्रामीण क्षेत्र में। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि वो शिक्षित नहीं है। अगर घर में कोई एक आदमी शिक्षित होगा तो घर के सभी सदस्य शिक्षित हो जाएंगे। जैसा कि अगर माँ शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। और बात रही यहाँ की संपत्ति की, तो संपत्ति तो वो आज नहीं तो कल मिलेगा ही। अधिकार यदि आ गया, अधिकार की बात करें तो वो आज नहीं तो कल मिलेगा ही। हमारी सरकार कुछ पॉलिसी को निकालना चाहिए। हमारे जो क्या उसको बोलते हैं, हमारे सीएम रह चुके बाबूलाल मारंडी जैसे यदि और सीएम आते हैं तो जरूर मिलेगा अधिकार। और सही कहा गया कि अधिकार तो मिल रहा है लेकिन आज फोर्स पे नहीं आ रहा है। जैसे कि ये सब हो रहा है कि एक परिवार के चलते हो जा रहा है, जो क्या बोले कि घर में जो बूढ़े सदस्य जो है उन्हीं कारण हो जा रहा है, जो बड़े सदस्य उन्हीं कारण उनको पूरी तरह संपत्ति नहीं मिल।
तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको इस अभियान की दूसरी कड़ी? अपना प्रतिक्रियाएं देने के लिए दबाएं नंबर 3। आपकी प्रतिक्रियाएं में सबसे बेहतरीन प्रतिक्रियाओं को हम अपने अगली कड़ी में प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।